Shanti. Smile, please. Aata hai muskurana? Aata hai? Jab koi muskuraye, to hum muskuraye, aise? Ki hume bhi pehle muskurana aata hai. Jo dusro ki muskurahat ki intezar ke baad muskurate hai, wo haath uthaye. कोई नहीं उठा रहे हैं. अच्छा, जिसको स्वयं पहले मुस्कुराना आता है वो हाथ उठाए. देखना परीक्षा हो जाएगी. क्योंकि इसी कैंपस में हम सब रहने वाले हैं, एक दूसरों को देखते रहेंगे, मिलते रहेंगे, तो फिर देखेंगे पहले कौन मुस्कुराता है. अच्छा, बड़ी खुशी हो रही है आप सभी को मिल करके. और स्वाभाविक है कि आप सबको देख करके हमें क्या याद आता होगा, क्या याद आता होगा? हमें अपने वही बचपन के दिन याद आएंगे ना, कि जिस दिन बाबा ने, जिस दिन प्यारी दादी जी ने हमें इस कुमारी जीवन के अंदर भट्टी करने बुलाया था, आप सबको देख करके हमें भी अपने वो भूतकाल के बड़े अच्छे दिन याद आ रहे हैं. सचमुच संगम युग में कुमारी जीवन मिलना एक बहुत बड़ा संजोग है. नदी नाव संजोग कहते हैं ने. तो संगम युग और कुमारी जीवन ये बहुत 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 बड़ा भाग्य है. तो भाग्य तो हमें बहुत बड़ा मिला है. संसार में आने वाला हर इंसान भाग्य लेके आता है, लेकिन फिर अपने भाग्य के साथ हम स्वयं क्या करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है. तो युग का महत्व, बाबा आया, ब्रह्मा तन में आया, इतने बड़े विश्व परिवर्तन के कार्य के लिए इतना बड़ा यज्ञ रचा, जिस यज्ञ के अंदर माताएं भी हैं, युगल भी है, अद्दर कुमार भी हैं, बच्चे भी हैं, कुमार भी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा महत्व भगवान ने किनको दिया, किनको दिया? कुमारियों को दिया. भगवान ने कुमारियों को नंबर वन महत्व भी दिया, फिर इतनी ही बड़ी जिम्मेवारी भी दी, फिर इतना ही बड़ा निमित्त बना के कार्य भी कराते हैं, जिसका मिसाल हमारे सामने कौन कौन है जरा सुनाओ तो. कौन है? मम्मा, फिर दादी प्रकाशमणि, फिर बहुत सारी दादियां हैं, दादी रतन मोहिनी, प्रत्यक्ष है ना हमारे सामने, अभी रूबरू में है. तो मम्मा कुमारी थी और एक दिन एकदम साधारण घर से आई थी, लेकिन उन्होंने अपने जीवन को इतना महत्वपूर्ण समझा, जो यज्ञ की माता बनी, यज्ञ की मम्मा बनी और ज्ञान की देवी सरस्वती के रूप में बाबा ने प्रख्यात किया। तो हमारा ये कुमारी जीवन है, ये हमारा बहुत बड़ा भाग्य है। तो भाग्य के साथ चार बातों का संबंध है, याद रखना अच्छी तरह से। भाग्य के साथ चार बातों का संबंध है। नंबर वन, अपने भाग्य को समझना। मेरे भाग्य में भगवान है, मुझे भगवान मिला है, और जब भगवान मिला तब भगवान को जिनका अति महत्व था और अति आवश्यकता थी, ऐसे रोल में मेरा पार्ट है। मैं एक कुमारी हूं, बाल ब्रह्मचारी कुमारी हूं। मुझे भगवान मिला, भगवान का संदेश मिला, तो ये कितना बड़ा भाग्य है। आप सभी समझते हैं कि सचमुच हमारा भाग्य बहुत बड़ा है। जो समझते बहुत बड़ा भाग्य है वो जरा हाथ उठाएं। तो अच्छा, कितना बड़ा? आसमान जितना, धरती जीतना कि भगवान जीतना? भगवान हमें कम नहीं रखता है, भगवान हमें अपना भी मालिक बनाता, विश्व का भी मालिक बनाता। तो भगवान अपना सब कुछ दे देता है, इतना बड़ा भाग्य। बाबा कहते बच्चे तुम बाप समान बनो, तुम परमात्मा संतान हो, परमात्मा वर्षे के अधिकारी हो, और इसीलिए जो बाप के पास है वो सब कुछ तुम्हारा है। अब सोच लो कितना बड़ा भाग्य मिला हुआ है। तो पहले तो अपने भाग्य को अच्छी तरह से समझना है। समझ लिया है? जिसने अपने भाग्य को एकदम अच्छी तरह समझ लिया है वो हाथ उठाए। अच्छी तरह समझ लिया है एकदम, बहुत अच्छा, अभिनंदन। तो एक है भाग्य को समझना, फिर दूसरा है अपने भाग्य को एप्रिशिएट करना। जो अपने भाग्य को रोज एप्रिशिएट करते हैं हाथ उठाएं। देखो रोज नहीं करते हैं, है? अच्छा, आज मैं एप्रिशिएट करने वाली बात कितनी महत्वपूर्ण है उसके बारे में वास्तविकता समझाना चाहती हूँ। सभा में से कोई एक बहन ऊपर आए, कोई एक बहन ऊपर आई, मेरे को मदद की जरूरत है, थोड़ा काम है, आ जाओ, कोई भी एक आ जाओ, आओ आओ आओ, अरे आ जाओ, इतनी देर नहीं लगाओ। नाम क्या है? पिंकी बहन। अच्छा, इनका नाम पिंकी बहन है भाई। ये पिंकी बहन जैसी है, जिस अकल वाली है, जिस नकल वाली है, जिस शकल वाली है, जिस बुद्धि वाली है, इनके जैसी दूसरी पिंकी बहन इतनी पूरी सभा में से मुझे कोई एक ढूंढ करके दे दूसरी एक तो मैं इनाम दूंगी। है कोई रेडी? मिल सकती है दूसरी पिंकी बहन? मिल सकती है? अच्छा पिंकी बहन आप ढूंढ सकती हो? नहीं, आपके जैसा कोई है ही नहीं। कुछ तो अलग होगा। आपको लगता है पास्ट में कोई आपके जैसा हुआ होगा? नहीं हो सकता। ऐसा लगता है फ्यूचर में इनके जैसा कोई होगा? नहीं हो सकता है ना। तो ये वास्तविकता मेरे, इनके, आपके, सबके लिए ये वास्तविकता है ना कि एक इंसान दूसरे जैसा नहीं, न था न होने वाला है। तो हम यूनिक है ना, तो अपने आप को अप्रिशिएट करना चाहिए ना कि मैं यूनिक हूं और मेरे जैसा दूसरा कोई था भी नहीं, है भी नहीं, होगा भी नहीं। अभिमान से नहीं, वास्तविकता और गौरव के साथ कहो मेरे जैसा कोई था भी नहीं, है भी नहीं, होगा भी नहीं। मैं यूनिक हूं, मैं एक न्यारी आत्मा हूं। अगर मैं यूनिक हूं तो पिंकी बहन आप, आपकी कंपैरिजन मेरे साथ कर सकती हो? कर सकती? करना चाहिए।
करना चाहिए।
हम एक गलत काम कर रहे हैं रोज और उसमें बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जिसको सेव करना है। हम हरे क्या करते हैं बच्चा? अपने आप को दूसरों के साथ, दूसरों को अपने साथ, दूसरों को दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं, कॉन्ट्रास्ट करते हैं और उसी के अंदर कंपटीशन में आते हैं, जेलसी में आते हैं, बहुत सारी नेगेटिविटी में आ जाते हैं। राइट है ये बात? हम कंपेयर कॉन्ट्रास्ट की साइकोलॉजी से जीते हैं। अब अगर वास्तविकता एक है कि एक व्यक्ति न मिले दूसरे से, ये वास्तविकता है, तो हमारा जब दो चीज है ही अलग, तो ये कंपेयर और कॉन्ट्रास्ट करना किसी भी हालत में राइट है? जो कहते हैं राइट है वो हाथ उठाओ। अच्छा, जो कहते राइट नहीं है वो हाथ उठाओ। बहुत अच्छा। राइट ना होते हुए हमारी मानसिकता इस प्रकार की वर्तमान तो चलती है और काफी परसेंटेज में चलती है, वो हाथ उठाओ। उठाओ उठाओ, हर एक की चलती है। जाने अनजाने सोते जागते अपनी दूसरों के साथ, दूसरी अपने के साथ कोई मतलब नहीं है, फिर भी मानसिकता क्या है? कंपैरिजन और कॉन्ट्रास्ट की। उसमें हम कभी अपने आप को इंफीरियर समझ के अभिमान में आते हैं, इंफीरियर समझ करके डिप्रेशन में चले जाते हैं और सुपीरियर समझ करके अभिमान में आ जाते हैं। ऐसे होता है? होता है ना? अपने आप से राइट चेकिंग करना तो ये गलत चीज है। इसलिए आज से अपने आप को राइट समझ करके अपने आप को राइट वे में मोटिवेट करो कि मैं यूनिक हूं, मेरे जैसा कोई था नहीं, है नहीं, होगा नहीं और भगवान ने मुझे जो कार्य दिया है वो मेरे से ही होगा, वो मुझे ही करना है। तो अपने आप को देखने में, अपने आप के भाग्य को फोकस करने में, अपनी शक्तियों को उजागर करने में हमारी जिंदगी के 95% यूज होने चाहिए। हो रहा है? दादी जानकी कहती है 95% मैं अपने पर ध्यान देती हूं, 5% और बातों को टेक केयर कर लेती हूं। तो जब दादी इस उम्र में अपने को 95% टाइम देती है, तो हमें देना चाहिए नहीं देना चाहिए? देना चाहिए नहीं देना चाहिए? तो दूसरा है अपने आप को, अपने भाग्य को मोटिवेट करना, ठीक है। तीसरी बात है अपने भाग्य की वृद्धि करनी। लोग क्या करते हैं, मैंने बहुत लोगों को ऐसे बोलते हुए सुना है, जाने दो ने, मेरा बैड लक है, मुझे कोई समझता ही नहीं है, मुझे कोई अंडरस्टैंड ही नहीं करता है, मेरे को कोई सपोर्ट ही नहीं करता है, मेरा तकदीर ही ऐसा है। ये क्या हुआ? अपने भाग्य को ब्लेम किया, खुद ही खुद के भाग्य को ब्लेम किया। करना चाहिए? जबकि मेरा तो श्रेष्ठ भाग्य है, मेरे भाग्य में भगवान है, मैं एक यूनिक पर्सनालिटी हूं, मुझे भाग्य को बढ़ाना है, मुझे भाग्य को वृद्धि करनी है। एक कहानी थोड़ी लंबी है, लेकिन मुझे लगता है मैं आपको सुनाएंगी तो वो आपके जीवन में बहुत उपयोगी होगी। इंसान अपने भाग्य को कितना ऊंचा ले जा सकता है? एक छोटा सा 14 साल का लड़का था, उनके मां बाप मर गए थे, चाचा के पास रहता था, पर उसको लगता था कि चाचा को मेरा एहसान बहुत फील हो रहा है, तो एक दिन बिना कहे घर से निकल गया, निकल गया और एक धोबी के पास गया और कहा मुझे काम देंगे, मेरे को नौकरी करनी है। बोला तुम करेगा? बोला हाँ। उस धोबी के घर में उसको काम पर रखा, लड़का अच्छा था, बहुत अच्छा काम करने लगा, पर धोबी का काम बढ़ता गया तो दूसरा लड़का आया, तीसरा लड़का आया, चौथा लड़का आया, ऐसे करके बढ़ते गए। अब क्या हुआ कि एक बारी ऐसा हुआ कि सभी लोग साथ में सोए हुए थे और ये कुछ नींद में बोलने लगा। होता है ना, कई लोग नींद में बोलते होंगे, तो बोलने लगा तो दूसरे दिन सुबह बाकी 3 लड़कों ने कहा ये तो रात को कुछ बोलता है, इसको कुछ हो जाता है, अभी मेरे को तो डर लगता है। फिर दूसरी रात को भी ऐसा उनसे बोल निकल गया होगा, तो इनों को पक्का हो गया कि इनको तो कुछ हो गया है या कुछ है। छोटे छोटे लड़के डरने लगे। दूसरे दिन वो 3 ने डिसाइड किया कि हम सेठ को बोलेंगे, या तो इसको रखो या हमें रखो, ये रहेगा तो हम तीनों चले जाएंगे। तो वो गए सेठ के पास और बोला कि सेठ जी इनको तो कुछ है, कुछ प्रेतात्मा भूत लगता है, वो रात को डरता है, बोलता है हमको डर लगता है, अभी आप इनको रखो या हमको रखो, नहीं तो हम चले जाएंगे। अब उसको हुआ सेठ को कि ये 3 चले जाएंगे, इससे इस एक को निकाल दो। उसने एक को कुछ बहाना करके उसको छुट्टी कर दिया। अब वो निकला वहां से अपने मन में संकल्प ले कि कोई बात नहीं, मैं अपना भाग्य आजमा लूंगा, कोई बात नहीं, मैं अपना भाग्य आजमा लूंगा, ऐसे बोलते बोलते चला और एक किसान के वहां पहुंचा। किसान को जाके कहा मुझे नौकरी देंगे? बोला तुम्हें आती है खेती? बोला आती नहीं है, सीख लूंगा। किसान ने उसको रखा, उनके वहां 6 मास 8 मास साल बहुत अच्छा काम किया। 2-3 साल हो गया, सारे एरिया में उस खेती का नाम होने लगा। इतने में क्या हुआ, 3 साल के बाद वो धोबी भाई इस किसान के वहां आया। ये किसान उसका मित्र लगता था। उस धोबी ने ये लड़के को यहां देखा तो वो किसान को पूछता है, ये लड़का आपके वहां है? बोला हाँ। बोला क्यों? बोला नहीं ऐसे ही पूछता हूं। नहीं नहीं बोलो कुछ। बोला ये मेरे था, मेरे वहां ही था। फिर क्या हुआ? फिर उसको कुछ प्रेत आत्मा ऐसे कुछ है, तो इसलिए फिर मैंने निकाल दिया। बस वो प्रेत आत्मा धोबी के वहां से किसके मगज में गया? किसान के मगज में गया। इस लड़के में तो नहीं था, लेकिन कहां गया? किसान के मगज में। अब किसान जब इनको लड़के को देखता था, उसको प्रेतात्मा दिखाई देने लगी। कुछ दिन हुआ, बहाना निकाल के लड़के को निकाल दिया बिना कोई बिचारे की भूल। अब वो लड़का तो फिर वो इस बोलते बोलते निकल गया, कोई बात नहीं मैं अपना भाग्य आजमा लेंगा, कोई बात नहीं मैं अपना भाग्य आजमा लूंगा। ऐसे करते करता एक राजा के राज्य के पास पहुंचा। वहां जाकर के वो पैरेगिर को कहा मुझे इस राज्य में नौकरी दिला दो ने। बोला ठीक है, हम राजा को बोलेंगे। तो राजा के पास मैसेज गया तो उसको पहले पैरेगिर की नौकरी मिली, बहुत अच्छा काम किया। तो धीरे धीरे उसको स्टोर कीपर की नौकरी मिली, वहां भी बहुत अच्छा काम किया। तो फिर धीरे धीरे राजा के नजदीक का पोस्ट मिला उसको, वहां भी बहुत अच्छा काम किया। इतना अच्छा लड़का, धीरे धीरे वो राजा का एडवाइजर बन गया, समझा? राजा का सलाहकार बन गया। इतनी उनकी प्रगति हुई। अब क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ, वो किसान बहुत बड़ा किसान था, वो राजा के पास आया, राजा से मिलने आया। और पहले के जमाने तो मालूम है किसान राजा लोगों का बहुत होता था, नजराना देते थे। और ये तो एडवाइजर था, तो बाजू में ही था ना। तो उसने देखा, फिर बात करते करते राजा जी को कहा, राजा जी ये भाई आपके वहां है? बोला हाँ बहुत अच्छा है, ये तो मेरा पर्सनल सलाहकार है। तो वो किसान तो देखते रह गया, फिर कुछ बोला नहीं। तो राजा ने कहा क्यों, आप इसको कैसे जानते हैं? बोला नहीं ये मेरे वहां था, बहुत अच्छा लड़का है वैसे। तो बोला पर फिर आपके वहां से कहां गया? तो बोला मेरे वहां से आपके पास ही आया होगा। तो बोला क्या बात? बोला नहीं और बहुत अच्छा है, लेकिन क्या है इसमें थोड़ा प्रेतात्मा है। अभी वो प्रेतात्मा कहां गई? राजा के मगध में गई। अब राजा ने क्या किया, उसको निकाल तो नहीं दिया, लेकिन राजा ने उसको नजर कैद कर लिया, नजर कैद में रख लिया। फिर कुछ समय के बाद क्या हुआ, उस राज्य के ऊपर एक बहुत बड़ी आपत्ति हो गई। दूसरे राज्य के राजा ने कहा कि हम आपसे युद्ध करना चाहते हैं। तो ये राजा ने कहा भाई खामखा क्यों युद्ध करना चाहते हो? बोला हमें आपकी ताकत का माप निकालना है। अरे लोग मर जाएंगे, जान हानि हो जाएंगी, दोनों राज्य का नुकसान हो जाएगा, आप और कुछ रीति से हमारी शक्ति का माप निकालो। ये लड़ झगड़ के माप निकालना उससे अच्छा है कोई और तरीका निकालो। तो वो सामने वाले राजा ने क्या किया, 2 घोड़ी भेजी, एकदम एक जैसी घोड़ी, रंग रूप हाइट एकदम, 2 घोड़ी भेजी। और उन्होंने कहा ये 2 घोड़ी में से मां कौन और बेटी कौन, अगर वो सही जवाब भेजेंगे तो हम आपसे युद्ध नहीं करेंगे, अगर गलत जवाब आया तो हम युद्ध करेंगे। अब राजा तो छिंकर में पड़ गया, सारे राज के विद्वानों को, संतों को, ज्योतिषियों को, सबको इकट्ठा किया, मीटिंग करे, वार्तालाप करे, कोई रास्ता निकल नहीं रहा है। तो ये जो दोस्त था ना, कैद में था ना, नजर कैद में था ना, उसको जाके समाचार मिला, जो उनको रोज खाना खिलाता था उसने कहा भाई हमारा राजा तो बड़ी चिंता में है, बोला क्या हुआ, तो सारी कहानी सुनाई, ऐसे ऐसे है, तो बोला राजा जी को बोल दो मैं जवाब दूंगा। तो राजा को बोला तो कहा अच्छा वो जवाब देगा, बोला हाँ, उसको नजर कैद से बाहर निकाला। उसने कहा राजा जी गांव का तालाब एकदम छलो छल भर दो, उसके बाद सारे नगरजन कोई भी एक बाकी नहीं रहना चाहिए, सबको उस तालाब के किनारे पर इकट्ठा करो, फिर दोनों घोड़ियों को वहां ले चलो, फिर वहां मैं जवाब दूंगा। बस जवाब चाहिए था तो राजा ने फटाफट ऑर्डर किया और सारा प्रबंध हो गया, घोड़ियों को लेकर के तालाब के वहां गए। फिर ये लड़के ने दोनों घोड़ियों को थोड़ा प्यार से थपथपाया, दोनों को एक दूसरों के आमने सामने खड़ा किया, आमने सामने होने की आज्ञा दी, और फिर आज्ञा दी कौन सी, पानी में जाओ। पानी में जाने की आज्ञा दी। अब बताओ पहले कौन गई होंगी, पहले मां गई, पीछे बेटी गई, जवाब मिल गया। सारे नगरजन, राजा लोग सभी इतने खुश हो गए, आप भी तो खुश हो जाओ। सामने वाले राजा को जवाब भेजा कि हमें सच्चा जवाब मिल गया है, मां कौन और बेटी कौन। वो सामने वाले राजा ने कहा कि जिस व्यक्ति ने जवाब दिया है उस व्यक्ति को मान शान सहित दोनों घोड़ियों सहित हमारे नगर में वापस भेजा जाए। यहां से तो मान शान सहित गया। सामने वाले राजा ने क्या किया, उसे बहुत मान शान से आवकार दिया और उसके मान में बहुत बड़ा सम्मान किया और अपनी राजकुमारी की शादी उस लड़के से की। देखो भाग्य, जब ये समाचार इस राजा को मिला तो इस राजा ने कहा हमें अभी इनों का सम्मान करना है, तो आपकी बेटी और ये बेटा अभी तो राजकुमार से भी बढ़ गया, दामाद हो गया, हमारे पास भेजे, हम सम्मान करना चाहता है। वापस आया तो इस राजा ने भी बहुत सम्मान किया और अपनी लड़की की शादी भी उनसे की। दो रानी का राजा बना और दोनों राज्य से आधा आधा हिस्सा उसको मिला राज्य का। मैं अपना भाग्य आज मालूंगा। बहने, जब हम कोई अच्छा कार्य करते हैं तब लाइफ में चैलेंजेस आती हैं, लाइफ में परीक्षाएं आती हैं, उससे गो थ्रू होना माना अपने भाग्य को बढ़ाना, पीछे हट नहीं करना, रुक नहीं जाना, बैठ नहीं जाना, भाग्य को कोसना नहीं, लेकिन अपने भाग्य को आजमा लो। आप हमारे भाग्य के साथ भगवान हैं। बाबा कहते एक कदम बच्चों का, 100 कदम, 1000 कदम, पदम कदम, बाप मदद करता है, हिम्मते मर्दा तो मददे खुदा। तो अपना भाग्य अजमाओ अर्थात बढ़ाओ अर्थात उसकी वृद्धि करो। हमने एक ही कुमारियों की भट्टी की और एक ही कुमारी की भट्टी में हमारी दादी ने और भगवान ने हमारा टेस्ट पेपर ले लिया और उस टेस्ट पेपर ले करके उसी भट्टी से हम समर्पित ब्रह्मा कुमारी बन गए। उस भट्टी से हम वापिस घर भी नहीं गए, हम भट्टी करने आए, उस भट्टी के बाद हम कभी वापस घर नहीं गए, बाबा के यज्ञ में स्वाहा हो गए। भाग्य को आजमा लिया ने, अपने भाग्य को बढ़ाओ वृद्धि करो और फिर उस भाग्य का दान करो। इतना बड़ा भाग्य मिल गया हमारे मुरब्बी भ्राता निर्वैर भाई, कुमारियों के भाग्य की बड़ी महिमा करते हैं कि दुनिया में एक लड़की ससुराल जाएंगी तो उसको मिल करके कितना मिलेगा, और यहां भगवान के साथ संबंध जोड़कर बाबा के घर में आने वाली कुमारी, जितने सेंटर्स वो उतने घर उनके, जितने भाई बहने इतना बड़ा उसका परिवार, जितने भाई बहनों का जो कुछ है वो सारी संपत्ति उसकी, भगवान का जो है वो सब हमारा हो गया और हम सभी के हो गए। कितना बड़ा भाग्य, अभी उसको बांटो, हम अकेले क्या करेंगे इतना सब। देखो आज इतने सारे बाबा ने सेंटर्स खोले, सेंटर खोल करके निमित्त किन को बिठाया, कन्याओं बहनों को माताओं को बिठाया। हाँ? तो बिठाया क्या करने लिए, दान करने के लिए, ज्ञान दान करो, गुण दान करो, शक्तियों का दान करो, शुभ भावना का दान करो, वरदानों का दान करो। कितना ऊंचा भाग्य है। अब बाबा हमेशा हर मुरली में सावधानी देते हैं। किससे हमें सावधान होकर के चलना है, माया से सावधान होकर के चलना है। इतना बड़ा भाग्य मिला है तो देखो, हम ड्राइविंग सीखते हैं तो अटेंशन तो रखते हैं ना, कहां एक्सीडेंट ना हो जाए। जीवन में कुछ भी करते हैं तो हम सावधानी तो पहले रखते ही हैं। इस जीवन के अंदर हमें किन बातों की सावधानी रखनी है, वैसे बहुत सारी बातें हैं, मैं बहुत सारी बातें नहीं कहूंगी, परंतु मुख्य चार बातें हैं जिससे अगर आप सावधान रहे ना तो आप सेफ रह जाएंगे। हमारी बहुत बड़ी वैल्यूएबल जीवन है। सबसे पहली सावधानी, आलस्य और अलबेलेपन का त्याग। हम आलस्य और अलबेलेपन के शिकार ना बन जाए। आलस्य है शरीर का, अलबेलापन है मन का। शरीर का आलस्य कहेंगे, चलो अभी तो थक गए हैं, थोड़ा सो जाए, आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं दो दिन के बाद कर लेंगे, ऐसे करते करते ये आलस्य की आदत आपके जीवन में अच्छे काम करने की अपॉर्चुनिटी खत्म कर देंगे। अलबेलापन है मन का, वहां शरीर को, यहां मन में अब देखेंगे। जरूरी थोड़ा मेरे को ही सब करना चाहिए, करेंगे, मौका मिल जाएगा तो करेंगे, चांस मिल जाएगा तो करेंगे, हमें कोई पूछेगा तो करेंगे, हमें कोई कहेगा तो करेंगे। ये तरीका नहीं है, तरीका ये है, बाबा कहते ऑफर करो तो ऑफरिंग मिले, और चांस लो तो चांसलर बन जाओ। मुझे स्वयं अपने आप को सेवा के लिए, अच्छे कार्य के लिए ऑफर करना है। कल पर छोड़ने से तो काल खा जाएगा, हमारी दादी कुमारका जी कहती थी, कल किसने देखा है? वो हर बात में इतना हमें अलर्ट करती थी। बाबा ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं, कल करना सो आज कर, आज करना सो अब कर है? तो आलस्य अलबेलेपन से सेफ रहना है, बचना है। दूसरा, बहानेबाजी से बचना है, एक्सक्यूजेस। आज ये था, कल वो था, ये नहीं हुआ इसलिए नहीं हुआ, वो नहीं हुआ इसलिए नहीं हुआ है? बहानेबाजी, एक्सक्यूज। और अगर बहाने निकालने की आदत पड़ गई तो कहां से भी बहाना मिल जाएगा। बहानों की बाजार में कोई कमी नहीं है, कुछ नहीं तो एक बहाना तो बहुत पावरफुल है। मालूम है वो आपको कौन सा, कौन सा, कोई बताओ तो हा? खड़े होके कोई एक सुनो। टाइम नहीं है, और मेरे को मालूम ही नहीं था मैं क्या करूं, मैं भूल गई। अब मैं भूल गई और मुझे मालूम नहीं था, इस बहाने का कोई जवाब है? बहाने की मार्केट में कोई कमी नहीं है, लेकिन ये बहाने आपके भाग्य का देवाला निकालेंगे। चाहिए तो ले लो बहाने, नो एक्सक्यूज। करना है, मरना है, कुछ भी हो जाए मुझे करना है, मैं करके रहूंगी। तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट, संघ के प्रभाव से बचकर रहना है। संघ और संघ के साथ कुछ बुरी आदतें जिसके कारण आज हमारे मां बाप परेशान हो रहे हैं, वो एक बुरी आदत कौन सी, कौन सी? मोबाइल। आज बहुत सारे मां बाप बहुत चिंतित हैं, बहुत चिंतित हैं, क्या करें, लेके देना भी पड़ता है, क्या करें, रोक भी नहीं सकते हैं। और अभी तो छोटे छोटे बच्चे छोड़ते ही नहीं हाथ से मोबाइल। ये मोबाइल किलिंग ऑफ टाइम, आपका टाइम खा जाएगा, जिंदगी का वैल्यूएबल टाइम खा जाएगा। उसी प्रकार ये बुरा संग, किसी से अटैचमेंट, किसी से लगाव, किसी की दोस्ती, किसी से फैमिलियरिटी, ये आपका जिंदगी का टाइम भी खा जाएगा और आपका मगज भी खत्म कर देगा, अपने आप को इस संघ के प्रभाव से बचाना है। अब बाबा मिला है, सारे संबंध एक के संग जोड़ने हैं, एक संग जोड़ सब संग तोड़ निभाना है, पर ममत्व नहीं रखना है, फंसना नहीं है, टाइम बर्बाद नहीं करना है, बहुत विवेक से अपने आप को चलाना है। और चौथी बात, नेगेटिविटी जो इस युग की विशेष लाक्षणिकता है, नकारात्मकता, बच्चे बूढ़े जुआन पढ़े लिखे अनपढ़े सब में है नेगेटिविटी। ये नकारात्मकता डिप्रेशन की ओर ले जाती है, इसलिए अपने आप को नकारात्मकता से बचाना है। हमारे यहां यूथ विंग के द्वारा एक पॉजिटिव चेंज प्रोग्राम चलता है, कॉलेजेस में आदि में जहां भी चलाना चाहे, सर्टिफिकेट प्रोग्राम है। पॉजिटिविटी क्या है और नेगेटिविटी क्या है, बहुत सिंपल मीनिंग है, जो करना चाहिए वो ही करो, ये पॉजिटिव है, जो करना चाहिए वो ही करो, ये पॉजिटिव है, पर जो करना चाहिए वो नहीं करो, ये नेगेटिव है। फिर जो नहीं करना चाहिए वो नहीं करो, ये भी पॉजिटिव है, ये जो नहीं करना चाहिए ये नहीं करो, ये पॉजिटिव है। लेकिन जो नहीं करना चाहिए वो करते हो वो नेगेटिव है। और आज हमारे जीवन में इस हिसाब से देख लो आप कि हमारी पर्सनालिटी कितनी पॉजिटिव है और कितनी नेगेटिव है। और कोई भी नेगेटिव चीज बहुत पावरफुल होती है, वो कम मात्रा में होते हुए पावरफुल होती है, उसका रिजल्ट पॉजिटिव की भेंट में ज्यादा डेंजरस निकलता है। कैसे, एक इतना दूध का पतीला ले लो और उस दूध के भरे हुए पतीले में दो ड्रॉप पॉइजन का डाल दो, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सारा पॉइजन हो जाएगा ना। अगर 99% पॉजिटिविटी में 1% नेगेटिव आ गया तो भी सारा जीवन नेगेटिव हो सकता है। मिसाल, सावधान रैली वाली बातों में एक महत्वपूर्ण बात याद रखना, ये ज्ञान अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे जीवन में बहुत अच्छी धारणाएं हैं, बस मेरा लक्ष्य भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा 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 होते हुए एक बार अगर ये संकल्प आया किसी कारण से भी कि मैं ये सब बातों में तो कैसे चल सकूंगी, कोई भी बात आई, देखो संगठन जहां होता वहां बहुत सारी बातें आती हैं, हर एक के स्वभाव संस्कार अलग अलग हैं, हर एक का एटीट्यूड अलग अलग है, उसमें टक्कर भी होती है, शक्कर भी होती है, चक्कर भी होती है, सब कुछ होता है। अभी उसी चक्कर में आकर के हमने अपने आप को एक नेगेटिव थॉट अगर दिया, बहुतों के जीवन में ऐसा होता है भाई, अगर ऐसी बात है ना तो मेरा तो ज्ञान में चलना मुश्किल, मेरा तो ब्रह्मा कुमारी बनना मुश्किल है, मेरा तो समर्पित होना मुश्किल है, मेरा तो सेंटर पर रहना मुश्किल है। क्या हुआ? एक नेगेटिव ने सारी पॉजिटिव लाइफ को क्या कर दिया? नेगेटिव कर दिया। जब रोड पर जाते हैं तो लिखा हुआ होता है ना, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। अपनी इतनी सुंदर महत्वपूर्ण ब्रह्मा कुमारी जीवन को टेक केयर करने के लिए, संभालने के लिए इस चार बातों की सावधानी, एक जागृत पहरेगीर की तरह हमें अपने पर रखनी है। याद रही वो चार बातें? जिन्हों को याद रही है हाथ उठाओ। वाह, ये तो सारा क्लास बहुत होशियार है, ताली बजाओ अपने लिए। फिर भी मैं रिपीट कर लेती हूं। नंबर वन, आलस्य अलबेलापन। नंबर टू क्या? बहानेबाजी। नंबर थ्री संघ का प्रभाव। और नंबर चार नेगेटिविटी। बहुत अच्छा। तो आप सभी को हमारी बहुत बहुत दिल की ऐसी शुभकामनाएं हैं कि ये भट्टी आपको भगवान की एक पक्की सच्ची योगिन तपस्विनी समर्पित ब्रह्मा कुमारी बनाने वाली भट्टी आपके जीवन में सिद्ध हो, ऐसी हमारी शुभकामना।